हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जैसे ही मालिका ने ये कहा, सोनल परी, जो कि फूलों में तब्दील हो चुकी थी, उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आने लगा था। वो मालिका को देख भी पा रही थी, उसकी एक एक बात को समझ भी पा रही थी। तभी अचानक सोनल परी ने देखा कि मालिका उसकी ओर ही आ रही है, और अचानक से उसने तारा परी वाले फूल को छूकर और सोनल परी वाले फूल को छूकर काली शक्ति के मालिक अमित से कहा था, अमित सर, ये फूल देखें, कितने ज़्यादा खूबसूरत फूल है। इतने खूबसूरत फूल तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी देखे ही नहीं है, क्यों ना मैं एक फूल तोड़ लूँ। जैसे ही मालिका ने ये कहा, अब तो तारा परी और वो सोनल परी दोनों की हवा खराब होने लगी थी। वो अच्छी तरह से जानती थी, अगर वो उनका फूल इस तरह से तोड़ सकती थी तो उससे उनकी जान भी जा सकती थी। तभी जैसे ही मालिका फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी थी, तभी काली शक्तियों के मालिक अमित ने उसे रोक दिया था और कहने लगे थे, तुम्हें इस तरह से बगीचे का कोई भी फूल नहीं तोड़ना चाहिए, अगर अमन सर को पता चल गया तो शायद उन्हें बुरा लग सकता है। जैसे ही अमित ने इतने नॉर्मल इंसानों के तरीके कहा, मालिका केवल दांत भींच कर रह गई थी, लेकिन बार बार उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ उन खूबसूरत फूलों पर जाकर ही ठहर रही थी। वही जिन महाराज, जो कि पेड़ के अंदर ही समाधि लिए हुए थे, वो भी सावधानी से उन लोगों को देख रहे थे। तभी अचानक काली शक्तियों के मालिक अमित का फ़ोन बजने लगा था, क्योंकि अमन के बाद अगर ऑफिस के सारे काम की जिम्मेदारी होती थी तो वो किसी और की नहीं बल्कि काली शक्तियों के मालिक अमित की ही होती थी। तो इसीलिए अमित को ऑफिस के वर्कर्स ने कॉल कर दिया था कि वो जल्द से जल्द ऑफिस में आ जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसे ही अमित ने ये सुना, उसने मल्लिका से कहा था कि अगर तुम्हारा ये फूलों को देखना और किसी का पीछा करना हो गया हो तो क्या हम वापस चलें? और रही बात उस लड़की काव्या की, तो मुझे लगता है कि हमें उसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। हम बेकार में उस लड़की के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। जैसे ही काली शक्तियों के मालिक ने ये कहा, मालिका केवल घूर कर रह गई थी और फिर जल्दी ही उन फूलों की ओर एक और बार ललचाई नज़र से देखते हुए जाने लगी थी। और जैसे काली शक्तियों का मालिक अमित पीछे की ओर मुड़कर जाने लगा, तब मल्लिका के दिमाग में क्या आया, उसने जल्दी से जाकर फूलों को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अचानक से जैसे ही उसने फूलों को छूने की कोशिश की, अचानक से मल्लिका को बहुत ज़ोरों से करंट लगा था। लेकिन वो करंट में चिल्ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर अमित उसकी आवाज़ सुन लेता तो वो पक्का उसे अच्छी खासी डांट लगाने वाला था कि उसने फूलों को तोड़ने की कोशिश ही क्यों की। लेकिन मल्लिका के दिमाग में कहीं ना कहीं शक पैदा हो गया था कि इस तरह से फूलों से करंट कैसे आ सकता है। लेकिन तभी उसे अमित के हॉर्न बजाने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी, तो इसीलिए मल्लिका जल्दी से दौड़कर गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। और मल्लिका के जाने के बाद तारा परी और सोनल परी और साथ ही साथ दादा महाराज ने राहत की सांस ली थी। और तारा परी ने सोनल परी से कहा था, तुम्हें उसे इतनी ज़ोरों से करंट देने की क्या ज़रूरत थी। तभी सोनल परी तारा परी की ओर देखते हुए बोली थी, तुमने देखा नहीं वो किस तरह से हमारी ओर बढ़ रही थी। अगर वो हमें फूल समझकर तोड़ लेती तो तुम जानते हो ना हमारे साथ क्या हो सकता था। और फिर तभी तारा ने सोनल परी से कहा था, अच्छे अच्छे चलो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अभी जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं वो काम कर लेते हैं। ऐसा कहकर जल्दी ही वो एक बार फिर परियों के वेश में जिन महाराज के सामने जाकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी थी कि दादा महाराज, आपको जल्दी करना होगा, इससे पहले कि कोई और मुसीबत हम पर टूट पड़े हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही तारा परी ने ये कहा था, दादा महाराज ने भी देरी ना करते हुए जल्दी ही कड़े मंत्र का उच्चारण करके एक बार फिर उसे गोल रंग नीले रंग के घेरे को तारा परी के पेट में प्रवेश करवा दिया था और तारा की कोख एक बार फिर भर चुकी थी।
और इस बीच हमारे बीच वो रिश्ता बन गया, इसके बारे में मैं आपको अपने मुँह से बता तक नहीं सकता हूँ। जैसे ही अमन ने उसकी ये बात सुन ली, उसका गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था, क्योंकि एक तो वो पहले ही अपने तीन जिन्नों को लेकर परेशान था जो इंसानों को परेशान कर रहे थे, और उसके इस जादुई बावर्ची ने भी इस औरत के साथ रिश्ता बनाया था, तो कहीं ना कहीं ये बात अमन को काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही थी। तभी उस तीसरे जादुई बावर्ची ने आगे कहना शुरू कर दिया था, जिन महाराज, उस औरत ने पूरी रात मेरे साथ रिश्ता बनाया था और मैं भी पूरी रात उसकी बाहों में खोया रहा था। वो बहुत ही हसीन औरत थी, और उसके बाद जब उसका मुझसे खूब दिल भर गया तब उसने मुझे मेरे कमरे में जाने के लिए कह दिया था, और मैं खुशी खुशी अपने कमरे में आकर लेट गया था। जिस टाइम मैं अपने कमरे में लेटा था उस टाइम रात के 2 बजे थे, और मुझे अपने कमरे में लेटे हुए अभी 5 मिनट हुई थी कि तभी अचानक से मुझे एक बार फिर उस औरत के कमरे से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी थी। अब आप तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था कि अभी तो मैं इस औरत के साथ था और जिस्मानी रिश्ता बन रहा था, तो फिर अचानक से इतनी जल्दी उसके कमरे में कौन आ गया होगा जो इस तरह से चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तभी मेरे मन में ही ये पता लगाने की इच्छा जागृत हुई कि जिस कमरे में मैं अभी 5 मिनट पहले था, आखिरकार उस कमरे में चल क्या रहा था। वेल, तभी मैंने अपनी जादू शक्तियों का प्रयोग करके अपने जिस्म को पूरी तरह से गायब कर लिया था, और पारदर्शी शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं उस दरवाजे के आर पार हो गया था। और जैसे ही वहां गया तो मेरा यकीन जाने जिन महाराज, मेरी हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी थी। वो साहूकारली औरत एकदम काले कपड़ों में बैठी हुई थी और 2 आदमी एक इंसान को पकड़े खड़े हुए थे, और वो औरत बड़ी ही बेशर्मी से उस जिंदा इंसान को अपने दांतों का प्रयोग करते हुए खा रही थी। क्या या। जैसे ही अमन ने ये सुना, उसका हैरानी के मारे बुरा हाल हो गया था और वो हैरानी से अपने बाकी सभी बावर्चियों की ओर देखने लगा था। सभी का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया था। सबको ये सच काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वो तभी जिन महाराज ने उसे तीसरे जादुई बावर्ची को रोकते हुए कहा था, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? क्या वो औरत कोई आम इंसान नहीं थी? क्या वो कोई डायन थी या कोई चुड़ैल थी जो इस तरह से जिंदा इंसानों को खा रही थी? तभी वो तीसरा जादुई बावर्ची ने अमन से कहना शुरू कर दिया था, हाँ हाँ जिन महाराज, मेरे मन में भी सबसे पहले यही ख्याल आया था कि जरूर ये औरत कोई ना कोई बुरी शक्ति होगी या फिर कोई ना कोई डायन या चुड़ैल होगी जो इस तरह से ये जिंदा इंसानों को खा रही है। तो इसी बात का पता लगाने के लिए मैं इस कमरे में ठहरा रहा था, लेकिन उस औरत के ना तो कोई बड़े बड़े दांत बाहर निकल रहे थे और ना ही उसके नाखून बड़े बड़े थे। वो नॉर्मल इंसान ही लग रही थी और वो उस जिंदा आदमी के कंधे के पास का गोश्त खा रही थी, और 2 से 3 बाइट जैसे जैसे वो उसके कंधे पर अपने दांत खड़ा कर खाती थी, वैसे वैसे वो इंसान जोरों से रोने लगता था। और जब उसने 2 से 3 बार उसके इंसान के कंधों के गोश्त को खाया, तब उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया था कि इस इंसान को लेकर जाओ और जाकर इसकी मरहम पट्टी करवाओ। ऐसा कहकर वो इंसान उस आदमी को वहां से ले गए थे, और वो आदमी रोता चिल्लाता हुआ वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद एक बड़ी ही पुरानी सेविका, जिससे मैंने उस औरत के चीखने चिल्लाने के राज के बारे में पूछा था, वो वहां खड़ी हुई थी और उसने अपना सर झुका रखा था और कहने लगी थी, मैडम मुझे आपको एक बात बतानी है। तो वो औरत उसकी ओर देखकर कहने लगी थी, देखो ये आदमी हमारे यहाँ माली का काम किया करता था। सबसे पहले तो इसने 7 रातों तक मेरे जिस्म की प्यास को बुझाया। अब उसके बाद मुझे उसका मांस इतना पसंद आया कि मुझे इसे खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, जब तक मैं इसकी इसी तरह से खा खा कर अपना मन नहीं भर लेती और उसकी जान नहीं ले लेती, तब तक ये यहाँ से कहीं भी भाग ना पाए, इस बात का ख्याल रखना। ऐसा कहकर उसने अपनी सेविका को वहां से भेज दिया था, लेकिन उसे सेविका उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो सेविका उसका हुक्म सुनने के बाद वो वहां से चली गई थी। अब जैसे ही मैं गायब होकर, जो कि मैं वहां उस वक्त कमरे में मौजूद था, ये सब सुन तो मैं काफी हैरान हो गया था। और अभी मैं उससे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी वहां अचानक एक बड़ा ही बुजुर्ग सा आदमी वहां आया था और उस औरत की ओर देखकर कहने लगा था, अरे डायन, तू यहां क्या कर रही है? क्यों इस तरह से जिंदा इंसानों का मांस खाती है? क्या तुझे इतनी सी भी शर्म नहीं आती? और कि तुझे हो क्या गया है? तूने अपने दिल को बिल्कुल पत्थर दिल बना लिया है। क्या कोई इतना बहरम कैसे हो सकता है? तू कोई डायन चुड़ैल भी नहीं है, तू एक इंसान है, इंसान। और सिर्फ एक अघोरी की बातों में आकर तू इस तरह से जिंदा इंसानों को खाने लगी है। आखिर क्यों एक इंसानी औरत जिंदा लोगों का मांस खा रही है? क्या होगा जब जिन महाराज अमन के सामने आएगा सारा सच? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।